और अभी हमारे बीच आदरणीय सुदेश दीदी जी पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही सेकंड्स में हमारे सामने होंगे। कोई भी जाएंगे नहीं, ऐसी महत्वपूर्ण क्लास और ऐसी विशेष दीदियों का साथ फिर तरसते भी रहेंगे तो मिलता नहीं है, इसलिए सब आदरणीय दीदी जी के संग का संपूर्ण फायदा उठाएंगे। दीदी जी ज्ञान सरोवर में थे, ऊपर से सीधा अभी पहुंचते स्टेज पर ही सीधा आ रहे, ऐसी बड़ी आयु नियरिंग 90, लेकिन फिर भी इतना ट्रेवल करते, इतना सेवा करते हैं और हमारे लिए बड़े इतना समय देते हैं, तो उसकी हमें कितनी वैल्यू होनी चाहिए। जरूर अच्छे से ताली बजाओ। आदरणीय दीदी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, दीदी जी का जोरदार करतल ध्वनि से, पुष्प गुच्छ से अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। दीदी जी आप आए, बाहर आ गई। दीदी जी सन्मुख विराजमान है, नजरों से निहाल कर रहे हैं। हम दीदी जी का परिचय लेवे उससे पहले 3 मिनट हम एकाग्र होके दीदी जी के नजरों से निहाल होंगे। दीदी के संग आए बाबा की शक्तिशाली पवित्र किरणों से अपने को भरपूर करेंगे। एकाग्र हो जाएं।
सिंहासन से हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृगुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन से हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
ओम शांति। ज्यादातर भाई बहने तो श्रद्धेय दीदी जी को अच्छी तरह से जानते हैं, पर बहुत से नए भाई बहने भी हैं जो दीदी जी के अनुपम परिचय को नहीं जानते होंगे। ये प्यारे बाबा का कोहिनूर का हीरा है, जिनको भगवान ने अपने हाथों से बड़ी फुर्सत से तराशा है। दीदी जी एक ऐसी महान हस्ती हैं, जिनका लौकिक परिचय भी बड़ा विशेष है। लौकिक छोटी आयु में भी आपने करामातें की थी, बहुत भक्ति भाव, बहुत समाज सेवा का भाव, बहुत पढ़ाई में आगे, इतना आगे कभी सुना नहीं होगा कि 16 साल की आयु में ही आप एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे और उसी आयु छोटी आयु में ही आपने 1957 में बहुत वंडरफुल तरीके से बाबा को पहचाना और बाबा ने आपको पहचान कर अपना बनाया। जल्दी ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। दिल्ली में बाबा से आप जब मिले तुरंत ही आप बहुत सारी ईश्वरीय सेवाओं का कारण बन गए और कुमारियों की ट्रेनिंग के कोऑर्डिनेटर बन गए बाबा के टाइम ही। इतना गहरा बाबा से आपका लगाव, इतनी स्पष्टता से आपने ज्ञान को समझा और उतनी ही स्पष्टता लगन से आप औरों को ज्ञान दान देते थे। बुद्धि जितनी शुद्ध होती है उतनी क्रिएटिव होती है। कई म्यूजियम, कई सेंटर्स खोलने का कारण बनते बनते आपकी जीवन गाथा बहुत लंबी है, उस पर बहुत बड़ी किताब लिखी जा सकती है। मैं तो सिर्फ हेडिंग्स बताऊंगी। 1974 में आपको बाबा ने लंदन भेजा और लंदन जाकर भी आपने करामाती सेवाएं की और वहां पर थोड़े समय में ही आप यूके की सभी सेवाओं के कोऑर्डिनेटर बन गए और लगभग 140 देशों में जो सेंटर्स है, मुख्य सभी देशों में आप जाकर के सेवाओं का कारण बनते रहे और दादी जानकी जी के साथ भी लंदन की सेवाओं का बहुत बड़ा कारण आप बने। 1996 में आप जर्मनी गए और जर्मनी में भी सेवाओं का वंडरफुल विस्तार किया, जो अभी वहाँ बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर और अनेकों सेंटर्स के द्वारा बाबा की पहचान लाखों आत्माओं ने प्राप्त की है। और वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय के जॉइंट चीफ हैं और साथ ही साथ आप ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड उसके भी डायरेक्टर हैं। बाकी डिटेल सेवाएं देश विदेश में आपने क्या क्या की हैं वो आपका जीवन बोलता है। आप टीचर ऑफ टीचर्स हैं, आप बाबा के दिल में सदा समाये रहते हैं और बाबा आपके दिल में समाया रहता है। यूं कहें आपने बाबा को कंधों पर बिठा करके सारे विश्व में बाबा का साक्षात्कार कराया है। विश्व भर में सेवाओं का कारण बनते अभी आप बहुत समय मधुबन इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में अपनी सेवाएं देते हैं। शरीर कैसा भी हो आपको कोई परवाह नहीं है, लेकिन आत्मा बहुत शक्तिशाली है। और आज आपका टॉपिक भी बहुत विशेष है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। आदरणीय दीदी जी को हम हृदय से शत शत नमन करते हुए अनुरोध करते हैं कि आज के विषय पर सब बाबा के बच्चों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय सुदेश दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राजयोगी, राज अधिकारी, विश्व कल्याणकारी, जिनके पास बाबा ने दोनों ही शक्तियां वरदान के रूप में दे दी है, कंट्रोलिंग पावर भी और रूलिंग पावर भी, ऐसे राजाओं को अथवा अधिकारियों को गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग का टाइम है, 12 नहीं बजे है। और नमस्कार, बहुत खुशी है, जनवरी का महीना और कितने भाग्यशाली हैं आप जो बाबा की पुण्यतिथि 18 जनवरी तो बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने जो आदि देव आदि राजधानी के आदि रतन आदि विश्व महाराजन जिनके पास सर्व प्रकार की शक्तियां रहीं उनके हम बच्चे हैं और दोनों ही बातें जरूरी हैं कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। तो कंट्रोलिंग पावर तो हठ योगियों के पास भी है, हठ से कंट्रोल करते हैं, पर हम राजयोगियों को बाबा हठ से कंट्रोल करना नहीं सिखाते। राजा ही सिखा दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। तो वास्तव में गीत बजा, सॉन्ग कितना अच्छा, ये एक इतनी अच्छी बात मैं देखती हूँ जो हमारे ये संगीत गीत बजाने वाले भाई होते हैं, ये फिल्म का ट्रेलर पहले से ही दिखा देते हैं गीत बजा के। टॉपिक अनाउंस करो ना करो, वो पहले से ही न केवल टॉपिक सुना देते हैं पर वो भाषण क्या है वो उसमें ही आ जाते हैं, गीत में ही आ जाते हैं। इसलिए सबको पता है कि आप सबने अपनी महिमा का गीत सुना, अपनी विशेषताओं का गीत सुना, भ्रकुटी के आसन पर विराजमान होकर के हम राज करें। पर किस पर राज करें, कंट्रोल से राज करें या राजाई शाही से रॉयल्टी से राज करें? कंट्रोल किन पर करना है और राज किन पर करना है, ये भी थोड़ा समझने की बात है। कर्म इंद्रियां अपने आप नहीं कार्य करती, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां जिनको ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां कहते हैं वो शरीर के अंगों की शक्ति कहेंगे। भाई इसमें इनमें बोलने की बहुत आदत है, थोड़ा कंट्रोल करो ना, बच्चा बोलता बहुत ज्यादा है, गपशप मारने की बड़ी आदत है, थोड़ा कंट्रोल करो ना। तो ये जो मुख है, आंख है, कान है, टेस्ट है, समझो आकर्षण है, ये अपने आप इनमें पावर नहीं है। जिसमें पावर, जो पावर में कमजोर होता है उनके लिए कंट्रोल करने की शक्ति चाहिए। ये कर्म इंद्रियां कर्मचारी हैं, सुना ना, कर्म इंद्रिया है कर्मचारी हमारी, ये कर्म करने वाली कर्म इंद्रियां हैं। परंतु कैसे कर्म करती हैं इसको संभालने के लिए, जैसे प्रजा को संभालने के लिए गवर्नमेंट को भी कोई मिनिस्टर्स रखने पड़ते हैं, समझ जाए, कोई पोर्टफोलियो दिया जाता है। तो एक्चुअली ये भिन्न भिन्न शक्तियां जो हमारे पास हैं, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, कंट्रोल करने की शक्ति, ये ब्राह्मणों के पास जो शक्तियां हैं जिसको अष्ट शक्तियां कहते हैं, ये हमारे व्यवहार में अगर आने लगती हैं, कर्मों से, कर्म इंद्रियों से करते हैं, पैर अपने आप नहीं चलते, पैरों को चलाने वाला कोई, चलाने वाला अलग है, परंतु ये कर्म इंद्रियों को जैसे स्वाभाविक रीति से आप देखेंगे कि कोई काम आप रोज रोज करते रहते हैं ना, बिना सोचे ही पैर उधर उठेगा। सोचने की आदत व्यर्थ पड़ी हुई है तो बिना समझे ही सोचने लग जाएंगे। टोकने की आदत पड़ी हुई है तो बार बार टोकते रहेंगे। किसी को कंट्रोल करने की आदत पड़ी है तो क्रिटिसिज्म कंट्रोल करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। तो ये कौन सी हैं? ये ज्ञान इंद्रियां अथवा कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान है परंतु पावर नहीं है। ऐसे ही है जैसे कि किसी के पास हम ज्ञान के भंडार तो बन गए, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी मिल गए, परंतु अस्त्र शस्त्र को चलावें कैसे? हथियार आपके पास हो या इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो और बजाना ना आता हो या रोंग बजाएं, तो उसमें सीखने की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या कहना चाहती हूं कि कंट्रोलिंग पावर कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करने की शक्ति के लिए भी कर्मचारियों को कंट्रोल करने वाले हम राज अधिकारी हैं, राजयोग सीख रहे हैं। तो कर्म इंद्रियों में अपनी ताकत नहीं है, उसमें शक्ति है, उसको यूज करके उसका भाई आंखें हैं देखने की शक्ति है, कान सुनने की शक्ति है, परंतु उसको यूज कैसे करना है, दृष्टि से देखना कैसे है, मुख से मुख खाना क्या है, मुख में डालना क्या है और मुख से निकालना क्या है, तब फिर कंट्रोलिंग पावर होती है। भाई इनमें खाने की बहुत आदत है, वेट बहुत बढ़ गया है, कंट्रोलिंग पावर चाहिए, राइट। ऐसी मोटी मोटी बातें हैं, जो मोटी मोटी चीजें हैं, जो दिखाई देने वाली चीजें हैं, उनको कंट्रोल करने वाली बात, वो भी बाबा ने सिखाई। और हम राजयोगी हैं, राज करने वाले, किस पर राज करना है फिर? अब क्वेश्चन उठता है, राजा कौन है, प्रजा कौन सी है, कर्मचारी कौन से है? तो राजा तो आत्मा ही है ना, परंतु राजा अगर सिंहासन पर नहीं बैठा हुआ तो वो राजा राजा नहीं कहलाता। मिनिस्टर अपनी अपनी सीट पर नहीं है तो उसके सिग्नेचर काम नहीं करते, भले उसमें योग्यता हो भी सही। तो बाबा हम बच्चों को समझ देते हैं कि हम न हट से कंट्रोल करते हैं, न अज्ञानता से कंट्रोल करते हैं, न डर से कंट्रोल करते हैं, हम तो स्वमान में स्थित रह करके उनका डायरेक्शन चेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, पर जिससे क्या है कि हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है, हमारी वृत्ति चेंज होती है, हमारी दृष्टि चेंज होती है, हमारी वाणी मधुर बनती है, हमारे संस्कार में सात्विकता आती जाती है। तो उसके लिए कर्म इंद्रियां आपे ही हमारे कंट्रोल में रहें, कंट्रोल करना ना पड़े। असली जो है कंट्रोल करना ना पड़े, नेचुरल चले। जैसे देह के भान में हमने कोई भान में आए, अभिमान सिखाया नहीं किसी ने, पर अभिमान आप ही जागृत हो जाता है, गुस्सा अपने आप ही आ जाता है। किसी ने कहे इसलिए गुस्सा दिलाया, पर गुस्सा अंदर कर्म में तभी आया जब अपने पास शांति की शक्ति नहीं है, कोई शक्तियों की कमी है। जब शक्तियों की कमी है तो कंट्रोल करना पड़ता है, अथवा ये कहे कमजोरियां ज्यादा हैं तो कंट्रोल करना पड़ता है। एक हिसाब से कहे शक्ति की कमी है, दूसरे तरफ से कहेंगे कमजोरी बहुत ज्यादा है, यानी हमारे पास वो पावर नहीं है। ज्ञान है पर शक्ति नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान भी देते हैं साथ साथ शक्ति भी देते हैं। इसलिए रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, या फिर कंट्रोलिंग पावर फिर रूलिंग पावर, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है अगर सिर्फ कंट्रोलिंग पावर कर रहे हैं तो। इसलिए रूलिंग पावर ज्यादा चाहिए। रूलिंग पावर माना राज करने की शक्ति। क्यों? कि हम राज योगी हैं, राज राजेश्वर बन रहे हैं। ईश्वर ने राज योग हमको सिखाया है, तो योग से शक्ति आती है, ज्ञान से समझ मिलती है कि क्या कंट्रोल करना है और कैसे कंट्रोल करना है। पर कंट्रोल करने की शक्ति के लिए
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलकार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
समाज में ओम शांति। समाज में जब बुराइयां बहुत बढ़ जाती हैं तो कलयुग में कंट्रोल करने के लिए दंड दे के कंट्रोल करते हैं। भाई जेल में डाल देंगे, जुर्माना कर देंगे, राइट। बाय स्पीड नम थोड़ी जा थोड़ी स्पीड है, चलाना है कार 60 की स्पीड पर चलाओ, 80 चलाया, कंट्रोल किया तो कोई फाइन पर देना पड़ेगा। तो वो कंट्रोल टेम्पररी कंट्रोल है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो कंट्रोल सिखाया है, टेम्पररी कंट्रोल नहीं, फोर्स का कंट्रोल नहीं, दंड दे के कंट्रोल नहीं, परंतु समझ दे करके कंट्रोल कराया। इसीलिए जिसके द्वारा कंट्रोल कराया वो ऊंचा हो गया ना, राजाधिकारी हो गया, बाकी कर्मचारी और प्रजा हो गई। अब प्रजा को और कर्मचारियों पर राज करने वाले राजाधिकारी, कर्म इंद्रियों को योगी नहीं कहेंगे, राज योगी कहते हैं। तो योग बुद्धि का योग लगता है और फिर जैसा जैसा बुद्धि के द्वारा अथवा संकल्प को शुद्ध करने का, तो जो करने वाला राजा अधिकारी है उसके पास पावर है। पावर अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, शक्ति अलग चीज है। ज्ञान से हाँ भाई बोलना नहीं ज्यादा चाहिए, दंड दे दिया, ज्ञान मिला तो थोड़ा स्पीड पर कंट्रोल रखेंगे, दंड पड़ेगा ना, ऐसा भरना पड़ेगा, तो या तो डर या फिर थोड़ा ज्ञान से कंट्रोल किया अपनी स्पीड को। कहने का मतलब यह कि हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में क्यों नहीं आती हैं, क्योंकि हमारे पास अधूरी शक्ति है। ज्ञान का भंडार है, पर ज्ञान को योग बना के शक्ति बनाए तो वो नेचुरली हमारे अंदर स्वाभाविक रीति से परिवर्तन आता है, और उसके लिए सूक्ष्म शक्तियां चाहिए। स्थूल शक्तियां, स्थूल कर्म इंद्रियां, परंतु जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, कर्म करने वाली, उन पर अगर हमने राज करना सीखा, अब क्वेश्चन आएगा कि मैं खुद ही तो राजा हूं ना, आत्मा हूं तो मन बुद्धि संस्कार है, ये तीनों है। अब तीनों को कंट्रोल करने वाला कहेंगे परमात्मा कंट्रोल करता है या शिक्षा देता है, ये समझने की बात है। अब मन का वास्तव में ये त्रिमूर्ति शक्तियां हमको मिलती परमात्मा से हैं, सत्य त्रिमूर्ति शिव से हमको तीन शक्तियां मिलती हैं। जैसे परमात्मा शिव अपनी पहली रचना अपने कल्याणकारी संस्कार से, प्रेम के सागर के संस्कार से, क्षमा के सागर के संस्कार से, सत्यता के संस्कार से, स्वाभाविक रीति से वो ईश्वरीय शक्ति कही जाती है, पवित्रता की शक्ति है, सत्यता की शक्ति है, कल्याण की शक्ति है, न्यारा रहने की शक्ति है, तो सर्वशक्तिवान कहते हैं। अब आत्मा को परमात्मा शक्ति देते हैं, मन के मंत्री को, क्योंकि पहले ये भी रचना है, आत्मा है रचना, परमात्मा है रचता, तो परमात्मा को भी सत्य त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। वो सत्यता की शक्ति है, सत्य में जो ताकत है वो फाल कोई आर्टिफिशियल में ताकत नहीं है, सच्चे घी में ताकत है, मिलावट वाले में ताकत नहीं है, सच्चे फूल में खुशबू है, कागज के फूल में खुशबू नहीं है, पिक्चर में तस्वीर है पर उसका अनुभव नहीं है, सागर का तस्वीर हम अपने घर में लगा देवें तो ठंडी हवा नहीं आ जाती। एक पिक्चर लगा देवें सनराइज हो रहा है, आधी रात अंधेरा ही होएगा, रोशनी नहीं आ जाती। तो अंतर है, यानी पिक्चर में कैरेक्टर नहीं है। तो जब हम देह अभिमानी हैं, तो हमारे में न कंट्रोलिंग पावर है न रूलिंग पावर है। हम अपनी कर्म इंद्रियों के आपे ही गुलाम हो जाते हैं राजा बनने के बजाय। तो बाबा पहले पहले आकर के ये कहते हैं दास नहीं बनो। दुखी हो गए ना कर्म इंद्रियों के कैद में आ गए तो उदास हो गए। बाबा कहते हैं मैं तुमको दास दासी थोड़ा बनाने आया हूं, मैं तो तुमको राजा बनाने आया हूं। मैं कोई प्रजा भी नहीं बनाने आया हूं। पर प्रजा को कैसे कंट्रोल करे, प्रजा के अंदर भी रॉयल्टी कैसे आवे, प्रजा को भी प्यार से कैसे संभालो, प्रजा को भी रॉयल कैसे बनाओ, वो बाबा हमको आकर के शिक्षा देते हैं। तो हम त्रिमूर्ति को भी अपनी जैसी रचना, खुद जैसे निराकार का कर्तव्य है सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए, सतयुगी राजाई स्थापन करने के लिए तीन की रचना रचते हैं। उसमें आदि शक्ति ब्रह्मा है, ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। तो मुझ आत्मा की भी तीन शक्तियां हैं, आप आत्मा की भी तीन शक्तियां हैं। और वो तीन शक्तियां अगर हम अपने कंट्रोल में रखते हैं तो पहली आदि शक्ति है मन की शक्ति, जो रचना करती है, संकल्प करती है। संकल्प है बीज। अब जैसा बीज होगा उस अनुसार उसका उसकी उसका फल निकलेगा। तो मन के संकल्प को शुद्ध करना है। भाई मैं खाना मैं चाहता तो नहीं हूं कि मेरे मन में इसके प्रति नफरत होवे, पर इनका कर्म ही ऐसा है नफरत आ जाती है। मैं बोलना तो नहीं चाहता था, मेरी भावना तो अच्छी थी पर पता नहीं गुस्से में बोल निकल गया। ना रूलिंग पावर है ना कंट्रोलिंग पावर है। तो बाबा हम बच्चों को ये तीनों शक्तियों को कैसे हम रॉयल्टी से अथवा राजा बन करके रूलिंग पावर कर्म इंद्रियों पर रूलिंग राजा कहे, उसके लिए मन मना भव का मंत्र देते हैं। आदि शक्ति को आदि देव ने आदि शक्ति पहली क्या कही, किस पर अभ्यास किया, अपने ओम स्वरूप की स्मृति में, आत्मिक स्मृति में और मन मना भव में स्थित होने में। तो मुझे अपने मन की शक्ति को, जो व्यर्थ मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं तो दरवाजा व्यर्थ का खुल जाता है, तो समर्थ नहीं बन सकते। ज्ञान तो है, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, परंतु क्यों नहीं, क्यों वेस्ट होता है, क्योंकि मन बाबा में टिका हुआ नहीं है, आकर्षण कहीं और है, इंटरेस्ट किसी और चीज में है। तो कितना भी कंट्रोल करो वो बार बार उसी चीज में इंटरेस्ट जाएगा। जैसे बच्चे को अगर ज्ञान नहीं है और अनुभव नहीं है तो आप कितना भी कंट्रोल करो कंट्रोल नहीं होगा। तो बाबा ने पहले राजयोग सिखा करके मन बुद्धि और संस्कार इसकी अच्छी समझ दी है कि मन रचना करता है। अब वो रचना तभी अच्छी होगी जब मन मना भाव होगा। मन मेरे को मना है किस बात की, व्यर्थ चिंतन को खत्म करना है। मन मना भव, मन को मने करने के लिए मन मना भव, दो बातें हैं। हे मन, तेरे को मना है व्यर्थ नहीं सोचना है। अब उसके लिए शक्ति चाहिए व्यर्थ नहीं सोचना है। तो मैं किसके साथ संबंध जोड़ूं जो मेरा व्यर्थ सोचना खत्म हो जावे? तो मन मेरा प्रभु चिंतन में अगर लगने लगा, मन मनन करने लगा, मन ज्ञान का मंथन करने लगा, तो मक्खन निकलना शुरू हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली मक्खन के गोले मुख में आएंगे, मधुरता आज भी जाएगी, वाणी भी मीठी होगी और शक्तिशाली होगी, बुद्धि दिव्य बनेगी, परखने की शक्ति होगी, रॉन्ग क्या और राइट क्या है मैं सोच रहा हूं। हम कहते हैं इस बात पर मैंने सोचा तो बहुत है, परंतु समझ में नहीं आता कि इस बात को मैं बदली कैसे करूं। तो बाबा बुद्धि का योग कहते हैं मेरे साथ लगाओ, मन मना भव, मन को अगर व्यर्थ चिंतन से बचाना है, पर चिंतन से बचाना है, तो मन में मगन हो जाओ, परमात्म प्रेम की लगन में मन मस्त हो जावे, रूहानी मस्ती में मस्त हो जाओ, मन मनन करने लगे, और जब मन मनन करने लगे तो प्रभु की लगन में मगन हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यर्थ का दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, समर्थ संकल्प उठेंगे, शुद्ध संकल्प उठेंगे, कल्याणकारी संकल्प उठेंगे, संकल्प में दृढ़ता आएगी, संकल्प में शक्ति भरेगी, तो वो अपने आप ही जैसे कि मनमना भव आदि शक्ति के साथ साथ फिर पालना करने वाली शक्ति भी साथ देगी। राजा के साथ मंत्री जो है होता नहीं है वैसे, परंतु संगम युग पर ये बुद्धि मंत्री है, मन क्रिएट करता है भाई, प्लानिंग बनाता है, बुद्धि निर्णय करती है राइट क्या है रॉन्ग क्या है। तो बुद्धि का योग भगवान कहता है मेरे साथ लगाओ। अब मनमना भाव में तीन स्टेजेस हैं। पहले है मन को के डायरेक्शन को मोड़ो, टर्न योर माइंड, जहां मन जा रहा है उस डायरेक्शन को चेंज करो, सोच को पॉजिटिव बनाओ, देह के सोचने के बजाय आत्मिक स्थिति में सोचो, पर चिंतन के बजाय प्रभु चिंतन करना शुरू करो। तो मैं राजा हूं ना, तो अपने मन को अगर मैं मनाना शुरू करूं या मनन कर मना करने लगूं, तो मना करने से जिद्दी हो जाता है, मानता नहीं, मनाऊं तो रूठता जाता है, तो इसीलिए क्या करें। इसीलिए बाबा ने कहा मन को डायरेक्शन चेंज करके, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूं, तो पहले है टर्न योर माइंड, दूसरा है ट्यून योर माइंड। अब मेरे जैसे जैसे आप कोई रेडियो से न्यूज सुनना चाहते हो, टेलीविजन से कुछ देखना चाहते हो, तो आप ट्यून करते हो ना, तो जहां आप सेट करते हो वहां की न्यूज सुनना शुरू कर देते हो, जिस चैनल को खोलते हो उसका दृश्य देखने लग जाते हो। तो बाबा ने हमको रोज नए नए सुंदर सुंदर मधुर महावाक्य सुना के साधन दिया है, इसलिए समझ दी है, और समझ दे करके पिता बाप के साथ साथ अपना संबंध टीचर के साथ जुड़ाया है, ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान के आधार से हम अपनी पालना करते हैं। जब समझ मिली तो बुद्धि जो है वो पालना करने वाली बन जाती है, राइट डायरेक्शन देके शक्ति देने वाली बन जाती है। रॉन्ग बुद्धि निर्णय करती है तो कंट्रोलिंग पावर खत्म। और रॉयल समझ में आ गया, राज समझ में आ गया, युक्ति आ गई, योग लग गया, युक्ति भी आ गई, शक्ति भी आ गई। तो इसीलिए फिर वही शक्ति जो है, जैसे मक्खन को ज्यादा दिन रखेंगे तो नहीं रख सकेंगे, मच्छर आ जाएंगे, थोड़ा उसका टेस्ट भी बदल जाएगा। तो धीमी धीमी आंच पर रख के क्या कर देते हैं, बहुत बहुत प्यार भरी लगन, प्यार से बाबा से योग लगाएं, तो वो शक्ति भर गई, माना मक्खन घी बन गया, शक्ति आ गई उसमें। और फिर वो व्यवहार में आ जावे, कर्म में आ जावे, संस्कार बन जावे। अब कट्ठा सारा तो इतना घी खा नहीं सकते, मिठाई बना दो, मिठाई बना के टोली बांटो, समझा? कर्म इंद्रियों में समझा, वो कर्म में आने लगी तो कर्म इंद्रियां आप तो ही कंट्रोल होंगी ना। यानी वो बुद्धि ने निर्णय शक्ति आ गई, गुण भर गए। टीचर ने फिर सिर्फ बाबा ने मन को अपने में लगाया, मन मना भाव, तो मन मना भाव मन मेरे समान बनाओ, मेरे साथ जोड़ा, तो मेरे जो संकल्प चल रहे हैं, तूने मेरा ज्ञान सुना, तेरे वो ही संकल्प चलेंगे ना। तो मन मना भाव मेरे जैसा मन बना ले। तो बाबा के मन में क्या है, सबके लिए कल्याण की भावना है, सबके लिए प्रेम की भावना है। कहते सेवक बन के आया हूं, तेरे को पावन बनाने के लिए आया हूं। तो ना मन केवल स्वच्छ हो जाएगा, मन शुद्ध भी हो जाएगा, शक्तिशाली भी हो जाएगा और पावन भी बन जाएगा। तो स्वच्छ बना, शुद्ध बना, पवित्र बना, पावन वृत्ति बना बन गया। तो जैसी हमारी वृत्ति हुई वैसी मेरी दृष्टि हो जाएगी ना। जितनी मेरी बुद्धि में ज्ञान और अज्ञान की समझ आई, उतना जो है मेरे गुण व्यवहार में आएंगे। ज्ञान मिला तो ज्ञान से योग बुद्धि का योग लगाया, और बुद्धि के योग लगाने से आत्मा को दूसरे प्रकार की शक्ति मिली। मन मना भव बुद्धि योग मेरे साथ लगाओ। और तीसरी बात, श्लोक में गीता में आता है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी भाव माम नमस्कारु, मेरे एक साथ रेस्पेक्ट से बुद्धि का योग लगाओ। मध्याजी भाव, लक्ष्य को सामने रखो, मुझे देवता बनना है। तो दिव्यता की गुण आएगा। सर्व धर्मान परितज्जे, सब देह के जो धर्म है, भाई क्या है अभी क्या करे, आंखों का तो धर्म है ना देखना, कान का तो धर्म ही है ना कर्म ही है ना धर्म ही कर्म सुनने का है, पर मैं वो सुनूं कैसे, उसमें मुझे किस कॉन्शियस में मैं सुनूं जो मेरा संस्कार बदली होवे और मैं अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करूं, कंट्रोल नहीं करूं पर राज करूं। तो मैं जितना जितना ज्ञान के राज को समझती जाऊंगी, तो कानों में बाबा के मधुर महावाक्य ऑटोमेटिकली गूंजते रहेंगे। तो हमारे कभी कभी बाबा कहते हैं कि ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर वो दिव्य कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, बुरा देखो नहीं, बुरा सुनो नहीं, बुरा करो नहीं। कंट्रोल करने के लिए तीन बंदर बनाए हैं। हमको भी बाबा ने कहा तुम भी बंदर जैसे बन गए थे ना, मन उछलता रहता था जगह जगह, पर बंदरों की बाबा ने सेना लेकर के पत्थर पर भी नाम राम नाम लिखवा के पत्थर तरने लग गए। तो जो हमारी बुद्धि पत्थर जैसी बन गई थी, वो बुद्धि भी तरने वाली बन जाती है, डूबती नहीं है, पार करने वाली बन जाती है, अटकता नहीं है दीवार ने, यानी रोड़ा नहीं बनती है, परंतु फ्लो हो जाता है एनर्जी में, मूव करती है राइट डायरेक्शन पर। तो हम अपने अंदर जितना जितना गुणवान बनते जाते हैं, बुद्धि की समझ क्लियर होती जाती है, बुद्धि दिव्य बनती जाती है, पारस बनती जाती है, तो लोहे को पारस बना देते हैं। हम ही लोहे जैसे संस्कार वाले थे, भारी थे, काले थे, वही लाइट बन जाते हैं, तरने लग जाते हैं। इसीलिए बुद्धि का योग राजयोग से भ्रकुटि के आसन पर विराजमान हो करके और सतयुगी दिल बाबा के दिल के सिंहासन पर बैठे, तो ज्ञान में प्रेम भर गया, ज्ञान में समझ भर गई, ज्ञान में शक्ति भर गई, तो उससे ऑटोमेटिकली हमको वो जो योग है, खाली योग नहीं है, वो योग तपस्या बन जाता है, शक्तिशाली बन करके। तो इसलिए शंकर यानी संस्कार जो है हमारे, उनको भस्म करने के लिए योग तपस्या की जरूरत है। संस्कार भी बंदर की तरह नाचते रहते हैं, कभी यहां कूदा कभी वहां कूदा, कभी एक खेल दिखाया कभी दूसरा खेल दिखाया। ये बाबा ने एक मुरली में कहा था, ऐसे संस्कारों को तो तुम बंदर से मंदर लायक बनने वाले बन जाते हो जब तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होने लगते हैं। तो ऑटोमेटिकली सतगुरु की श्रीमत पर चलने से, सतगुरु की श्रीमत हमारे कर्म श्रेष्ठ करती है। तो तीनों संबंध मन बुद्धि और संस्कार पर राज करने के लिए बाबा पिता रूप में रचता के साथ हमको भी रचना बना रचना है, पर मन की रचना कैसे करनी चाहिए। मन मौजी नहीं बनो, मन में सुस्ती नहीं लाओ, मन के गुलाम भी नहीं बनो, पर मन मना भव हो करके महारूहानी मौज में रहो, मनन चिंतन मंथन करो, फिर बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ, तो अपने आप को गुण भर के और शक्तियां भर के शक्तिशाली बनो, तो उस शक्ति से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर दूसरों के भी के लिए भले के संस्कार, हमारे अंदर व्यवहार परिवर्तन होता जाएगा ना। अब हमारा व्यवहार परिवर्तन होगा, संस्कार परिवर्तन होगा, पर पिछले संस्कार कैसे भस्म होंगे? अभी तो चलो ठीक है, बीच बीच में पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, तो उनको कैसे खत्म करें? इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम योग की शक्ति से राजा बन रहे हो ना, तो राजा को समझ है। राजा क्या करते हैं? अपना किला मजबूत बनाते हैं। पुराने जमाने में जब राजाओं की लड़ाई चलती थी तो किला बड़ा मजबूत बनाते थे और ऊपर से ही देखते थे कि माया दुश्मन कहां से आ रहा है। तो हम भी ये ब्राह्मणों का किला बड़ा मजबूत बनाए, एकता का किला हमारे अंदर होगा, एक ईंट भी हिली हुई नहीं होगी, तो हम स्वयं के भी रक्षक हैं और यज्ञ के भी रक्षक हैं, परिवार के भी रक्षक बन जाते हैं, ताकि हम माया को दूर से देख सके, बुद्धि की परख होवे, न ईश्वरीय रूप से माया आवे न माया चींटी की तरह आवे। बाबा ने उस दिन कहा कि शेर से चींटी बन जाती है, तो मैंने कहा बाबा आपने कहा है आप महारथी हो, तो महारथी को तो चींटी भी बेहोश कर देती है, उसे चींटी भी हमारे पैर के नीचे आके मर जावे तो चींटी भी नहीं आवे, क्योंकि चींटी हाथी के कान में चली जाती है ना, उसको मदहोश कर देती है। ये चींटी भी ना आवे, इतनी हमारे अंदर दिव्य दृष्टि हमारी होवे, चींटी छोटी चीज भी बड़ी चीज दिखाई पड़े। कहने का मतलब छोटा सा संस्कार भी अपना बड़ा दिखाई पड़े, अपनी छोटी सी कमजोरी को भी लाही छोटी चींटी नहीं समझे। हाथी को छोटी चीज बड़ी दिखाई पड़ती है। तो महारथी अगर बनना है, विजयी रथ अगर बनना है, तो अपनी कमजोरी छोटी भी बड़ी दिखाई पड़े और दूसरे की बड़ी कमजोरी भी कोई बात नहीं है, रहम की दृष्टि से, दया की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से, तो बुद्धि दृष्टि है ना, उसमें ऑटोमेटिकली एकाग्रता आएगी, बुद्धि एक रस हो जाएगी, मन रूहानी रस में डूब जाएगा, तो हम अपने आप ही अपने मन बुद्धि के राजा बन जाएंगे ना। हमारी कर्म इंद्रियों को हमको कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, फिर हमको ये कारण नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि या तो आता ना कि नहीं मेरा सब संस्कार है, नहीं ये कारण बन गया ना, ये रीजन था ना, उनका स्वभाव संस्कार ऐसा था ना, ऐसा किया, तो बुद्धि ने निर्णय करना सीख लिया, निर्णय शक्ति आ गई, योग बाबा से लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली कारण का निवारण हो जाता है। और हम जैसे बाबा ने कहा, वो निवारण तब होगा जब बुद्धि में अहंकार ना आवे। आता है बुद्धि का ही अहंकार होता है, मैं अच्छा कर सकता हूं, कंपेयर करते हैं ना जब दूसरे के साथ, या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा, मैं कमजोर हूं ये बड़ा समझदार है, स्वमान खत्म हो जाएगा या अभिमान जागृत हो जाएगा। तो इसीलिए वो अपना राजा बनने में राजा ही रहे, मैं किसी चीज का दास थोड़ा ही हूं, राजा हूं। तो राजा के पास अपनी जो शक्तियां बाबा ने दी है, चाहे ज्ञान की शक्ति है, चाहे योग की शक्ति है, चाहे परखने की शक्ति है, चाहे समेटने की शक्ति है, चाहे समाने की शक्ति है, यह अभी राजयोगियों के पास है, सतयोग वाले देवताओं के पास नहीं है। वो विश्व महाराजा है, हम विश्व महाराजा बनने वाले हैं, पहले हम स्वयं के राजा हैं। जब हम अपने स्वराज लेते हैं ना, तब सतयुगी राज मिलता है, विश्व राजा से नहीं मिल जाता। स्वराज अधिकारी सो सतयुगी राज अधिकारी, स्वराज अधिकारी अपने आप पर ऑटोमेटिकली राज करता है। और बाबा कहते हैं, तुम तो बाबा के दिल को भी जीत लेते हो, बाबा के दिल पर भी राज करते हो, बाबा दिल के तख्त पर बिठा देते हैं, तुमको अपने कंधे पर बिठा करके राज तुमको दे देता है, खुद परम धाम में बैठ जाता है। तो ऐसा जैसे वो, तब हम आत्माएं जब बिल्कुल अपने संस्कारों को अच्छी तरह से समझें, परखें और अपने आप को हैंडल कर सकें, क्यों कि अगर अपने आप को हैंडल करने की पावर नहीं आई है, यानी अपने संस्कारों को हम आप हैंडल करें, हम दूसरों को हैंडल करने लग जाते हैं, तो संस्कार की, हमारा संस्कार उनके संस्कार से लड़ने लग जाता है, अपना संस्कार कमजोर बन जाता है। इसलिए हमारे पास श्री मत क्या है, पर मत क्या है, मन मत क्या है, इसको समझना भी है, परंतु परंतु करके परमत पर नहीं चलने, मन को प्रभु मन को मनन करेंगे तो मन मत खत्म हो जाएगी और परमात्म मत पर चलेंगे तो परमत खत्म हो जाएगी। श्रीमत पर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे व्यवहार में फिर हमारा कर्म भी दूसरों को प्रेरणा देने वाला बन जाएगा। उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा मन बुद्धि और संस्कार वो तीनों जब परिवर्तन हुए, अपने संस्कारों को पर ध्यान दिया तो दूसरे के संस्कारों से लड़ेंगे नहीं। क्यों? कि मेरे संस्कार में कल्याण समाया हुआ है तो पुराने संस्कारों का संस्कार तब करेंगे जब वो मर जावे ना, जिंदा तो नहीं संस्कार करने के लिए, तो दूसरे को जिंदा देख रहे हैं वो भी तभी, उनका भी संस्कार तभी खत्म होगा जब योग की अग्नि जलाएंगे। तो तपस्या चाहिए, इसलिए हमारी वृत्ति भी ठीक होवे, हमारी दृष्टि भी सी ठीक होवे, हमारे विचार भी ठीक होवे, हमारा आहार भी ठीक होवे, यानी मन का आहार, और तब व्यवहार ठीक होगा ना। एक मुरली में बाबा ने बताया था, आचार विचार विचार आहार और व्यवहार, तीनों बातें। विचार कैसे हैं? विचार से अगर मंथन करेंगे तो ईश्वरीय विचार होंगे। तो इसीलिए हम सदा ये ध्यान रखें कि हमारे पास बाबा नेचुरल पावर जो है वो हमारे को चेक करने की शक्ति हो, व्यर्थ चिंतन है या प्रभु चिंतन है, स्वचिंतन है, स्वदर्शन है या प्रभु दर्शन है। तो बार बार वो दर्पण बाबा दे रहे हैं, और न केवल दर्पण अभी का दे रहे हैं पर हमारा भविष्य का दर्पण है ये। हमारी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर जो है वो हमारे भविष्य का दर्पण है, क्योंकि जितना जितना अब हमारे अंदर परिवर्तन आया, पास्ट हमारा खत्म हुआ, भविष्य नजर आने लगेगा ना। न केवल हमको विश्वास होगा मैं सतयुग ब्राह्मण देवता फरिश्ता बनने वाला हूँ, सतयुग देवता बनने वाला हूँ, निश्चय पक्का होता जाएगा, नशा पक्का होता जाएगा, व्यवहार बदलता चला जाएगा। तो इसीलिए बार बार क्या तरीका है, दर्पण बाबा ने दिया है, बार बार अपने आप को अर्पण करके दर्पण बन जाओ और दर्पण से देखते रहे कि मेरे में स्वच्छता कितनी आई है और सुंदरता कितनी आई है और अभी तक दाग कौन से हैं, जिसके लिए बाबा ने कहा बीच बीच में अभ्यास करो, बार बार ट्रैफिक कंट्रोल करो, बार बार जो है ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो जो तरीके बाबा ने बताए हैं वो ये बताए, तो समर्पण कर दिया बाबा को, दर्पण बन भी गए और दर्पण हाथ में भी रखा। दर्पण कैसे बन गए कि दर्पण की एक खूबी है, कर्मातीत बनने की एक खूबी है कि दर्पण जो है उसके सामने अगर आप गंदा चेहरा लेके जाओ, दर्पण कहता है कि तू तेरा चेहरा बड़ा गंदा है। दर्पण ने कभी बोला नहीं, देखते ही मैंने देखा, रुमाल उठाया अपने पास और पोंछा चेहरा, बिना बोले दूसरे के संस्कार को परिवर्तन हो गया। और दर्पण के ही सामने खड़ा हुआ तो दर्पण ने न गंदगी ली, न तो सुंदरता से प्रभावित हुआ, न कमजोरी से प्रभावित हुआ। तो अर्पण कर दे अपने जीवन को प्रभु के प्रति, समर्पण कर दे तो हम अपने आप ही अपना चेहरा दर्पण देखते साफ भी करते रहेंगे और बाबा के सामने खड़े होकर के कहेंगे देखो मैं तुमको कितना सुंदर बना रहा हूँ, श्याम से सुंदर बना रहा हूँ, पर बाबा हमारी कमी को भी, उसका कमी का भी असर बाबा पर नहीं, और सुंदर बन गए तो सतयुग में देखने भी नहीं आता कि मैं कैसे कैसे तुमको सुंदर बनाया। तो इसीलिए जितना समर्पण भाव होगा, संस्कार भी बदलेंगे, विचार भी बदलेगा, व्यवहार भी बदलेगा। जब आचार विचार व्यवहार और संस्कार बदल गया तो संसार बदल जाएगा, तो नए संसार के राजा बनेंगे, विश्व के महाराजा बन जाएंगे। तो ऐसे विश्व के महाराजा बनने वाले राज अधिकारी, रूलिंग पावर है ना, कंट्रोलिंग से भी ज्यादा पहले रूलिंग पावर होवे, कंट्रोलिंग पावर अपने आप आ जाएगी। पर बिगनिंग में कंट्रोलिंग पावर चाहिए, इसलिए योद्धा बनाया है। हम राजयोगी हैं, शिव शक्ति पांडव सेना भी है, इसलिए कंट्रोल भी करना है सेना बन करके, मालिक बन करके कर्म इंद्रियों के, और फिर राजा भी बनना है। तो रॉयल्टी से जो बाबा ने सिखाया, जैसे रॉयल्टी से बाबा पढ़ाता है, कमजोरी भी दिखाता है और गुण भी दिखाता है, तो ऐसे बाबा को फॉलो फादर करेंगे। बाबा ब्रह्मा ने ऐसे ही किया, तो हम सर्टनली, ये जनवरी का महीना, कल 18 जनवरी है, 18 अध्याय पूरे होते हैं। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, हर चीज से मोह नष्ट होवे, स्मृति आवे मैं राजा हूं, मैं राजकुमार हूं, विश्व महाराज कुमार हूं, राजयोगी हूं, ये स्मृति रहे। तो ये जो अटैचमेंट है कर्म इंद्रियों से, पांच तत्वों से, अटैचमेंट के तरीके तो यही है ना, खाने का लोभ, संबंध का मोह, कानों के सुनने का रस, आदतें जो पड़ी है वो बदल जाएंगी, स्वभाव बदल जाएगा, संस्कार बदल जाएगा। तो भावना को बदलना है, स्वयं के स्वरूप में स्थित होंगे, स्वभाव बदलेगा, ईश्वरीय संस्कार, परमात्मा के बच्चे हैं, रॉयल बच्चे हैं, संस्कार बदल जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।
ज्योति स्वरूप।